राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 1993 प्रातः लगभग 7:30 बजे जोधपुर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
यहाँ आपका तपोमय जीवन है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत महात्मा लोग जानकर तपस्या करते हैं, इंद्रियों का संयम करके सब तरह के कष्ट सहते हुए तपस्या करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। आप लोग अगर आज से ये भावना कर लें, कब हम यहाँ तपोमय जीवन बिता रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता से हमने तप नहीं किया, अब भगवान ने कृपा करके हमें तपस्या करने का सुंदर मौका दिया है, या कुछ भी भोग भोग ना कुछ उत्संग्रह करना होता ही नहीं, ठीक संयम पूर्व जीवन व्यतीत होता है, तो हमारे कल्याण के लिए है ये। ऐसा अगर आप भावना करें तो कैद खाने का दुख नहीं होगा। मैं तो बहुत बार कहा करता हूं, बीमारी आती है, वो बीमारी आती है आपको शुद्ध करने के लिए। जान करके हम पथ्य का सेवन करें, उसकी अपेक्षा भगवान की इच्छा से जो संयम कराते हैं भगवान, उसका माध्यम बहुत ज्यादा है। हम पथ्य कुपथ्य का विचार मन से विचार करें, उसकी अपेक्षा वैद्य का किया हुआ पथ्यापथ्य का विचार विशेष श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही आपका ये विधान भगवान का किया विधान है। आपका जो विधान बना है वे चाहे कृपालु न हो, परंतु विधान कृपा पूर्ण भरा हुआ कृपा से वो ठीक है। कई कई जगह ऐसी बात भी होती है जो अभी अपराध नहीं दिखता और उसको भी ऐसे कारागार हो जाती है, कभी कभी फांसी तो हो जाती है। तो वो अपराध आपके न जाना हुआ है, अपराध नहीं है ये नहीं होगा। और ये कभी कायदा ही नहीं है कि पहले दंड दे दो और पीछे अपराध कर लो, ऐसा नहीं होता है। अपराध पहले होता है, दंड पीछे होता है। तो दंड में भी भगवान की कृपा बनी रहती है। लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार भगे तत्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो। जैसे माता अपने बच्चा का पालन करती है, तो कभी कभी वो हित भरे हाथ से मार भी देती है, पर मार में भी उनका हित प्यार वैसा ही रहता है। जैसा प्यार प्यार करने में लाड़ करने में हृदय का भाव रहता है, उस माँ का भाव थप्पड़ लगाने में भी भीतर में भाव वही रहता है, दो नहीं रहते। परीक्षा करना हो तो आप कर सकते हो, जब कहीं माँ अपने बच्चे को मारती हो उस समय में आप भी थोड़ा जाकर मार दे दे, क्या करते हो, तेरी मदद कर दूं। कोई भी काम करता है तो उसको तो मदद कर दिया जाए, तेरी मदद कर दूं, सहारा दे दूं, तो वो लड़ेगी आपसे, किसको मारता है, तो तू क्या कर रही है, तू भी तो मार ही रही है। पर माँ का मारना दूसरे का मारने बड़ा फर्क है। तो ऐसे आपके ये जो कारागार है, ये माँ की मार है, ये व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि व्यक्ति चाहे तो कर नहीं सकते, किसी को कैद में डालना चाहे तो कोई व्यक्ति किसी को कैद में भेज सकता है। किसी की मर्जी हो कि हम कैद में डाल ही दें, तो हाथ की बात थोड़ी है। ये जो कैद खाना बोला जाता है वह भगवान का विधान होता है, तो उस विधान से आया है, वो बहुत बढ़िया चीज है। महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने जब ऐसे किया तो वो राजनीतिक कैद थे ना, तो कारागार में वो ऐसे कारागार ना एक क्लास दो बी क्लास थी वह, तो उस क्लास में रहते हुए उन्होंने होम्योपैथी की दवाई का बहुत किया, लोगों को बहुत बांटते थे। और उनके मुख से मैंने सुना है पुस्तक 2000 पुस्तकें पढ़ी है मैंने, 2000 पुस्तक तो इतना अध्ययन था उनका, नाम जप करने के लिए माला पहुंची तो माला नहीं ली गई, तो एक जेल के अफसर ने कील दे दी कि तुम नाम गणना करो कैसे, तो कैसे गणना करो और तीर काट दो, इस पर दीवार पर लिखी काट दो, कही दे दी है। तो इस तरह से नाम जप उन्होंने किया, तो कितने बड़े हो गए कल्याण के संपादक, विदेशों तक उनका नाम। तो इसमें बिगाड़ नहीं होता है, मन के विरुद्ध कोई परिस्थिति आती है वो बुरी लगती है, परंतु उसी बुरी लगने में उनके लाभ होता है, नुकसान नहीं होता, उनका हित होता है, अहित नहीं होता है। शासन बुरा लगता है पर होता अच्छा है। तो आप लोगों को तो बहुत ही अच्छा काम मिला है, अब आपको भी हम तो कहती हैं, ये भावना आपको दुख देगी, आपको ये भावना करनी चाहिए कि हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में तो संयम में रहना पड़ता है, खुशियां जहां जा नहीं सकते, खुशियां जो खा पी नहीं सकते, संयम से रहना पड़ता है। तो आप पर तो भगवान की कृपा हुई है, जो ऐसे आपके पापों का नाश करने के लिए शुद्धि कर रहे हैं। धोबी कपड़ा धोता है तो मैला होता है, नाद में उबाल करके पत्थर पर पटक करके साफ करता है, तो कपड़े का मैल दूर हो जाता है, वो साफ हो जाता है। इस तरह से इस कष्ट में आप साफ हो रहे हैं, तो ये एक मैल धोने का स्थान है। तो मेरे पर तो मन पर असर पड़ा, यहाँ बड़ी अच्छी जगह है, एक पवित्रता का अनुभव होता है, क्योंकि सब पवित्र हो रहे हैं, पुराने पाप तो नष्ट हो रहे हैं, मेरे पाप अभी बढ़ नहीं सकते। और यहाँ जो काम करते हो, जेल में कई काम होते हैं, बुनने का, काटने का, सीने का, कई काम होते हैं, यहाँ क्या काम होते हैं मेरे को पता नहीं, परंतु वो काम होता है वो आपके बड़े लाभ की बात है। ऐसे तो इतने संयम के बिना नहीं कर सकते, यहाँ करना पड़ता है, तो उससे ही लाभ होता है। और यहाँ दंड भोगने का भी लाभ होता है, संयम का लाभ होता है, बड़े लाभ की बात है। एक बात और है कि मनुष्य जितने हैं वे मनुष्य शुभ काम तो अपनी मर्जी से करते हैं और अशुभ विशेष मर्जी से करते हैं, बड़े निगाह रह करके पाप करते हैं, वो जान करके करते हैं, तो पाप तो करते हैं स्वतंत्रता से, और उसका दंड भोगना है, भोगना पड़ता है प्रतंत्रता से, नरक में जाकर भोगे, बीमारी में भोगे, वो भोगना प्रतंत्रता से पड़ता है। ऐसे आपने काम तो किए हैं स्वतंत्रता से, अगर उसका फल भोग रहे हैं प्रतंत्रता से, तो जब तक तत्व ज्ञान न हो, भगवत प्राप्ति न हो, तब तक जो दुख भोगना पड़ता है वो कारागार ही है। क्यों, काम किए स्वतंत्रता से, भोगते हैं प्रतंत्रता से, क्या फर्क है, वही बात यहाँ है, वही उनमें है। इस वास्ते आपको ग्लानी तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोगों के जैसे बाहर घूमते हुए हम भोगते हैं, ऐसे आप एक जगह होकर भोगते हैं, कोई इसमें हानि की बात नहीं है। भगवान के नाम का जप करो, आप जिस संप्रदाय के हैं, जो आपका नाम है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ईसाई हो, जो आपका इष्ट है उस इष्ट को याद करो, उस नाम का जप करो, काम करते हुए जप करो, विशेष बातें मत करो, निरर्थक समय बर्बाद मत करो। जितना समय मिले सोने का उतने सो गए, तो जिस हर समय में भगवान का नाम लो, काम धंधा करते हुए भी नाम लेते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ते साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम और मुख राम है, राम राम करते रहे मुख से और हंस काम करते रहे, और हृदय साची प्रीत, हृदय भगवान की तरफ चलना है हमें। तो ये ग्रस्त होता भी साधु है, तो आप संयम रखते हुए या भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, उस भक्ति में आप हो जाएंगे। देखने में चाहे कैदी दिखे आप, पर आपका कैद खाना ये महान उन्नति करने वाला हो जाएगा। तो जितना समय मिला भगवान के भजन में लगाओ, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकें जो होगा नहीं तो अपने गीता पेश की शुद्ध पुस्तकें यहाँ भेजनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ भेज देंगे पुस्तक, वे पुस्तक आप पढ़ो तो बड़ा लाभ होगा। जितना जितना समय मिले, जितनी छुट्टी मिले उतना, फालतू समय तो बर्बाद करना ही नहीं है, काम में लगे रहो या जो काम धंधा वो लगा रहे। छुट्टी मिले तो पुस्तक पढ़ो, अगर नाम जब तो काम धंधे भी करते रहो, क्योंकि जबान से तो काम करना होता नहीं है, हाथों से काम करना होता है, तो भगवान का नाम लेते रहो। उद्देश्य अपना बनाना चाहिए, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ये अपना काम करते हुए करते रहे। भागवत दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, उसमें कहा है कि तत्तेनुकंपाम सुसदृक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद वाक बबुर्भिर वेधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं तथ्यनुकंपा पूरी जता तथ्यनुकंपा सुसमीक्ष माण, आपकी कृपा को देखता रहे, कृपा की तरफ देखे, ये कृपा हो रही है। जैसे माँ के प्यार में कृपा है, मार में कृपा विशेष होती है, ध्यान देना। माँ प्यार करती है, हृदय लगाती है, दुलारती है, उसमें कृपा है, उसकी अपेक्षा वो मार देती है उसमें विशेष कृपा है। जैसे कई बालक खेलते हो और किसी माँ के मन में आ जाए, वात्सल्य प्रेम में हृदय उमड़ जाए, तो लड्डू तो सबको दे सकती है कि सब बच्चों को लड्डू दे दो, जलेबी दे दो, बच्चे खेलते हैं, हृदय माँ का दे दिया। पर उद्यमता करते हो तो सब बच्चों के थप्पड़ नहीं दे सकती, अपने बालक के देती है। तो अपनापन ज्यादा होता है वहाँ कष्ट में, अपनापन ज्यादा होता है तो थप्पड़ अपने बालक को दी जाती है, दूसरे बालक को नहीं। ऐसे आपकी ये थप्पड़ लग रही है, ये भगवान का प्यार है, अपनापन है। सुख तो हरेक को दिया जा सकता है, पर दुख तो अपने बालक को ही दिया जाता है, अपनापन विशेष है। तो इस दंड में इतना दुख नहीं है जितना भगवान के अपनापन में सुख है, आनंद है, हित है, लाभ है। इस वास्ते को प्रसन्नता से आप इस अवस्था में रहें। और दिन है अच्छी तरह से काटे, अपन बड़ा बड़ा भारी लाभ होता है, बीमारी में बड़ा आनंद रहता है, ऐसे इसमें आनंद रहता है। ये कारागार काम तो मेरे नहीं पड़ा, पर बीमारी का काम पड़ा है, तो बीमारी मैंने देखा है, बहुत मौज रहती है। 40-45 दिन तक अन्न नहीं दिया था, ऐसी मस्ती रहे, इतना आनंद आता है, क्या बताओ आपको, हर दौर समय आनंद नहीं रहता। और बुखार तो तुमने देखा ही है, 100 रुपए गए थे, 4-5 डिग्री बुखार में व्याख्यान भी दिया था मैंने, और मस्ती बहुत आनंद बहुत रहता, बहुत खुशी रहती है। तो बता रहता कोई शास्त्री जी ऋषि कुल पढ़ाने वाले आए कि आपकी बीमारी जितनी दिखती इतना शरीर कुछ नहीं दिखता, शरीर इतना थका नहीं था बीमारी देखते हुए, और अभी प्रसन्नता रहती थी, आनंद आता था और कविता निकलती थी ऐसी मस्ती से, ऐसा आनंद होता है। तो प्रतिकूलता में आनंद बहुत होता है, अनुकूलता में वो आनंद नहीं है, लोग समझते नहीं है। तो अनुकूलता में सुख भोगते हैं, अनुकूलता का सुख है वो पुण्यों का नाश करता है, और प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है। यार अनुकूल प्रतिकूल हमारे मन चाही परिस्थिति में तो हमारा पुण्यों का नाश होता है, हमारे न चाही वो प्रतिकूल स्थिति पापों का नाश होता है। तो हमारे लाभ तो पापों के नाश में है, पुण्यों का नाश में थोड़ा ही है। विश्वास दे हम तो शुद्ध हो रहे हैं, हम निर्बल हो रहे हैं, तो उसमें बड़ा आनंद रहता है, बड़ी खुशी रहती थी। हमारे गुरु भाई थे अमृतराम जी को करते थे, एक दिन मैंने कह दिया कि बहुत ही आनंद हो रहा है प्रभु, तो वो कहते हम तो तंग आ जाते हैं तुम्हारे आनंद होता है। अब है आनंद क्या बताओ। तो इस तरह से ये हमारे भोगी हुई बात है, कैद का काम नहीं पड़ा भाई, काम पड़ जाए तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि बड़ी मस्ती रहेगी, ना कहीं जाना है ना व्याख्यान देना है ना आना है, मौज से भजन करवा दो। ऐसा आनंद की जगह है, बड़ी आनंद, बड़ा सुंदर अवसर अवसर मिला है, भगवान ने कृपा तो दिया है, प्रभु की कृपा थे, नर पाई नर देह ये है बाद ही गवाई गाई गीता ने ज्ञान की, तो प्रभु की कृपा से मिला है, किसी व्यक्ति का किया हुआ नहीं है। दोष हमारा बना है उस दोष को दूर कर देते हैं। महाराज ने कहा ना जो तत्काल दंड होता है वो थोड़े में काम चल जाता है, और इसका जो बहुत दिन ही होते हैं अगर नरकों में जाना पड़ेगा तो उसका दंड भयंकर होगा, ब्याज सही देना होगा। तो जो दिन बढ़ेगा जो ब्याज बढ़ेगा, और जल्दी दिन भोग जाए तो सुख हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसी बात भी हुई है, मैंने ऐसी बातें सुनी है कि उसको कोई पाप नहीं था उसको दंड भोगना पड़ा। एक बात आई ऐसी, कोई घटना सुनी मैंने, एक आदमी था तो बड़ा सज्जन आदमी, रात्रि में लघुशंका करने के लिए बाहर निकला तो सामने एक सुनार का घर था, सुनार का घर था तो उसमें सोना आया था बाहर से घड़ने के लिए, तो लोगों को मालूम हो गया। तो रात्रि में गश्त लगाने वाले शहर का सब जागृत करने के लिए मानो पहरा पहरा लगाने वाले प्रहरी आया, तो उनमें से एक आदमी ने जाकर और वो सोना ले लिया और सोनार की कत्ल कर दी। वो लघुशंका करके उठा तो वो बक्सा लेकर निकला, निकला तो उसको पकड़ लिया, उसने कहा देख आधा तेरा आधा मेरा, तू पकड़ मत मेरे को, कहते मैं ऐसा बेईमान इस चीज लेने वाला नहीं हूँ, पकड़ दूंगा। कि देख मैं तेरे को समझाता हूँ, समझ ले नहीं तो तेरी दुर्दशा होगी, बोली होगी सो भोग लूंगा मैं, खास गश्त लगाने वाले आदमी ने ऐसा किया, पकड़ लिया, छोटा नहीं तो सीटी बजा दी, सीटी बजाते ही जितने पहरे वाले हुए एकदम इकट्ठे हो गए, उसको पकड़ लिया कि ये घर से निकला है सोना लेकर के और मैंने इसको पकड़ लिया। अब साबित हो गया सब पहरे वाले ने पकड़ लिया, पितर जाकर देकर तो सोनार की कत्ल कर दी, खून कर दिया उसने, तो बस सीधा ही घर में जाने नहीं दिया, सीधा ले गया कैद खाने में बंद कर दिया। अब वहां ही उसका मुकदमा चला, वास्तव में क्या बात है। तो एक बड़े जज थे अच्छे, जो फैसला देने वाले वो बड़े ईमानदार थे, तो वो मुकदमा होते होते अंत में उनको फांसी का हुक्म हो गया, जज ने लिख दिया कि इसको फांसी दे दी जाए, क्यों आदमी कत्ल कर दी और पहरे वाले ने पकड़ दिया, तो फांसी का हुक्म हुआ। तो उसने कहा कि भगवान के घर में न्याय नहीं है, मेरे को फांसी का हुक्म हो गया, ये वचन जज ने सुना, जज ने सुना तो भी ये हृदय से बोलता है, कसूरदार नहीं है, तो ठीक है। क्या किया कि एक फर्जी आया शिकायत लेकर, कैसा अमुक आज में अमुक घर में कत्ल हो गई रात में, ऐसा हो गया, उन्हें जांच की जाए, तो पुलिस भी गई, सब गई, दो आदमियों को भेजा, एक दो वो जो बेचारा निर्दोष था उसको, और एक उसने कहा सिपाही को, दोनों तुम उठाकर ले आओ उसको। बीच में पड़ता था जंगल, तो वहां जाकर देखा तो खून बिखरा हुआ, लथपथ कान में कुछ पड़ रहा है, ऐसा खून देखा तो उसको उठाया घाट पर, तो दो आदमी जज ने कहते तीसरा आदमी कोई ना हो, दो ही उठा कर ला उसको। तो वो बीच में थोड़ा जंगल पड़ता था, तब सिपाही बोला कि देख मैंने साफ कह दिया तो मेरी बात मान ले, तो धन मिलता जान बच जाती, अब देख तुम कहते मैं ऐसा बेईमानी का धन नहीं लेता, देखते ईमानदारी का क्या फल हुआ। वो कहते फल जो कुछ हो जाए, परंतु मैं बेईमानी का धन नहीं लेना चाहता, दूसरे हक का नहीं लेना चाहता। वे तो आपस में बात कर रहे थे, ऊपर था वो जीता हुआ आदमी, जानती रही कि सिपाही ये बोला, मुंशी भी ये बोला, सिपाही ये बोला, मुंशी बोला, वहां जाकर रखा, उठ गया। अब वो सिपाही कांपने लग गया, बड़ी आफत हो गई है। तो सिपाही वो जज ने कहा कि निर्दोष हो फांसी, लेकिन कहा मेरे मन में कैसे भाव हो गया। फिर उस एकांत ने पूछा, फिर फांसी हो तो हुकुम हो चुका, वो तो कैसे हो गया, वो दिन फांसी होगी। तुम एकांत लेकर कहा कि भाई तुम सच बताओ, इस उम्र में तुम्हारे द्वारा कोई पाप हुआ है क्या, सच हो। तो सच्ची ये बात थी कि मेरे घर में एक आदमी आया करता, वो अनाचारी था, जो बुरी नींद से आता था, तो मैंने निगाह रखी, ना तो स्त्री बोलती ना बताओ वो कौन सा, तो एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके कत्ल करके पीछे नदी बहती थी उसे मैंने फेंक दिया, तो मेरे हत्या हुई उससे। तेरे को उस हत्या का फल है, ये अभी हत्या करी इसका फल नहीं है। जज कहता मेरे निर्दोष हो, फांसी को लिखा कैसे, मैंने लिखा नहीं जा सकता मेरे से, तो उसका ये फल है, और ये फल सिपाही को भोगना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा है, अपने दिखने में अपराध नहीं दिखता और कैद हो जाती है, फांसी तक का हुक्म दे, बोलो कोई कद कैद ही बेचारे कुछ भी बंद हो गया, इस तरह से कभी हो जाता है, तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए। कोई न कोई हमारा पाप है, संसार में अन्याय हो सकता है, यहाँ वकीलों के द्वारा अन्याय हो सकता है, पर परमात्मा का अन्याय नहीं होता, उसकी दृष्टि के बिना यहाँ के कुछ कर नहीं सकते। तो कोई न कोई अपना पाप का फल है, इस वास्ते कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मानना कि बड़े बड़े हमारे साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार करते हैं, अत्याचार होता नहीं है, जिस पर हुआ है वो तो न्याय ही हुआ है। करने वाले अत्याचार करते हैं, जानवरों को मार देते हैं, मनुष्य को मार देते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो अत्याचार करते हैं, होता नहीं है, होता है उनके तो जैसा कर्मों का फल है वैसा ही होता है। तो होने में तो प्रसन्न रहना चाहिए और करने में सावधान, ये दो बात है खास। पिलाने की बात है, अरे विद्यालय है वहाँ, तो कई व्याख्यान है, तो एक सज्जन ने कहा कि छोटी सी बात बताओ एक अच्छी, मैंने मगर होने में प्रसन्न और करने में सावधान, बड़ी राजी हुई। हरदम करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, कितने विपरीत से विपरीत परिस्थिति आवे, कैसी दुखदायी घटना घट रहे उसमें तो रहो प्रसन्न, और करने में सावधान रहो, कोई भी शास्त्र से लौकिक मर्यादा से विरुद्ध हम काम नहीं करेंगे, ऐसे सावधान रहो। तो ये दो बात आप भी याद कर लें, करने में हरदम सावधान सावचेत, भीतर से हरदम सावधान रहे, कोई भी शास्त्र विरुद्ध व्यवहार विरुद्ध लोगों के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, इसमें सावधान रहे। और होने में दुख आवे सुख आवे, कितनी आफत आ जाए, फांसी तक हो तो अभी उसमें दुख नहीं करना है, कोई बात नहीं है, कोई न कोई पाप का फल है, हम शुद्ध निर्मल हो रहे हैं।